एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार, अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
आज हम एक ऐसी शख्सियत पर गहराई से नजर डालने वाले हैं जिन्होंने अमेरिका के इतिहास को गढ़ने में बहुत अहम भूमिका निभाई, लेकिन अक्सर मतलब या तो उन्हें गलत समझा गया या फिर नजरअंदाज कर दिया गया।
हाँ, हम बात कर रहे हैं अलेक्जेंडर हैमिल्टन की, और हमारी चर्चा का आधार होगी रॉन चरनो की लिखी उनकी काफी विस्तृत जीवनी।
बिल्कुल, और चरनो की किताब इसी बात पर जोर देती है कि हैमिल्टन अमेरिका के संस्थापक पिताओं में शायद सबसे ज्यादा उस आधुनिक अमेरिकी राष्ट्र और उसकी जो जबरदस्त आर्थिक ताकत है उसके असल निर्माता थे। और दिलचस्प बात यह है कि वो कैरेबिन में जन्मे थे, एक तरह से बाहरी व्यक्ति थे।
अच्छा।
हाँ, उनकी कहानी आप्रवासन, फिर योग्यता के बल पर आगे बढ़ना, एक मजबूत केंद्रीय सरकार की क्या जरूरत है, और आज का जो पूंजीवाद है उसकी बुनियाद, इन जैसे कई जरूरी मुद्दों को छूती है, और ये मुद्दे आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं।
हाँ, ये तो है। और चरनो जो हैमिल्टन की एक छवि बनी हुई है ना, कि वो बस अमीरों के समर्थक थे, अलोकतांत्रिक थे।
हाँ, वो अभिजात्य वाली छवि।
बिल्कुल, उसको भी चुनौती देते हैं। किताब उन्हें एक दूरदर्शी देशभक्त के रूप में दिखाती है जिसने मतलब बहुत मुश्किल हालात से निकलकर राष्ट्र निर्माण में इतना बड़ा योगदान दिया। उनकी कहानी से वाकई बहुत कुछ सीखने को है।
तो चलिए फिर शुरू करते हैं उनके इस असाधारण सफर को, बिल्कुल शुरुआत से, उनके बचपन से लेकर उनके आखिरी दिनों तक देखते हैं।
हैमिल्टन का जन्म हुआ वेस्ट इंडीज में, नेवीज द्वीप पर, और उनका शुरुआती जीवन तो किसी त्रासदी से कम नहीं था।
हाँ, वो विवाह के बिना पैदा हुए थे।
जी, और उस जमाने में ये एक बहुत बड़ा सामाजिक कलंक माना जाता था। फिर पिता ने परिवार छोड़ दिया, और जब वो छोटे ही थे उनकी माँ की भी मृत्यु हो गई। इतना ही नहीं, उनके चचेरे भाई ने आत्महत्या कर ली और उन्हें अपने भाई से भी अलग कर दिया गया। मतलब एक के बाद एक झटके, वाकई भयानक शुरुआत थी।
और इन शुरुआती आघातों का जाहिर है उनके व्यक्तित्व पर बहुत गहरा और स्थायी असर पड़ा। चरनो बहुत बारीकी से बताते हैं कि कैसे बचपन की ये जो अस्थिरता थी, असुरक्षा थी,
हाँ,
उसने उनमें जीवन भर एक व्यवस्था, एक वैधता, एक मजबूत ढांचे की तीव्र इच्छा पैदा की। उन्हें हमेशा एक तरह की मतलब स्वीकार्यता की तलाश रही,
हाँ समझ आता है।
और साथ ही इसी ने उनमें एक असाधारण महत्वाकांक्षा और कभी ना हार मानने वाली जो कार्य नैतिकता होती है उसे जन्म दिया। उन्हें लगता था कि उन्हें लगातार खुद को साबित करना है।
और उनकी प्रतिभा तो खैर छिपी नहीं रही, बचपन से ही उनमें लिखने और हिसाब किताब यानी वित्त के मामलों में गजब की योग्यता थी।
अच्छा।
हाँ, उनकी इसी काबिलियत को देखकर कुछ स्थानीय व्यापारियों ने मिलकर उन्हें पढ़ने के लिए उत्तरी अमेरिका भेजने का फैसला किया।
वाह।
तो ये एक ऐसे आप्रवासी की कहानी की शुरुआत थी जो विपरीत परिस्थितियों से लड़कर सिर्फ अपनी बुद्धि और मेहनत के दम पर आगे बढ़ने वाला था। एक तरह से अंडरडॉग स्टोरी।
बिल्कुल। न्यूयॉर्क पहुंचकर उन्होंने किंग्स कॉलेज में दाखिला लिया, जो आज कोलंबिया विश्वविद्यालय है। अब अमेरिका में उस समय क्रांति की हवा तेज थी।
हाँ, माहौल गरम था।
और हैमिल्टन तुरंत इस माहौल में रम गए। उन्होंने कम उम्र में ही ऐसे प्रभावशाली पैम्फलेट लिखे जिन्होंने देशभक्त आंदोलन को एक बौद्धिक आधार दिया। सोचिए, इतनी कम उम्र में इतनी परिपक्व राजनीतिक समझ।
कमाल है। और जब क्रांतिकारी युद्ध छिड़ा तो उन्होंने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और सेना में शामिल हो गए। एक तोपखाने के कप्तान के रूप में उन्होंने मैदान में बहादुरी भी दिखाई।
जी,
और यही उनकी प्रतिभा ने जॉर्ज वॉशिंगटन को ध्यान खींचा। वॉशिंगटन ने इस युवा में न केवल सैनिक क्षमता देखी बल्कि उसकी प्रशासनिक समझ और तेज दिमाग को भी पहचाना।
और यही शायद हैमिल्टन के जीवन का सबसे निर्णायक मोड़ आया। वॉशिंगटन ने उन्हें अपना सहयोगी मतलब एड डे कैंप, अपना मुख्य सहायक नियुक्त कर लिया।
अच्छा।
अगले 4 साल तक हैमिल्टन वॉशिंगटन के सबसे भरोसेमंद लोगों में से एक रहे। वो वॉशिंगटन के लिए पत्र लिखते, खुफिया जानकारी संभालते और महत्वपूर्ण मिशनों पर भी जाते थे। उन्हें वॉशिंगटन की कलम तक कहा जाने लगा। और इस दौरान उन्होंने उस समय की जो सरकार थी, कॉन्टिनेंटल कांग्रेस और परिसंघ के लेख, उनकी कमजोरियों को बहुत करीब से देखा। कैसे वो टैक्स नहीं लगा सकती थी, सेना को फंड नहीं दे पाती थी, राज्यों में तालमेल नहीं था।
हाँ, वो अराजकता का दौर।
बिल्कुल, यहीं से उनके मन में एक शक्तिशाली केंद्रीय सरकार की जरूरत का विचार एकदम पक्का हो गया। श्वेलर सिस्टर्स काफी मशहूर थीं।
हाँ, तो इस शादी ने उन्हें सामाजिक और राजनीतिक रूप से और मजबूती दी। उन्होंने वकालत शुरू की,
लेकिन उनका असली ध्यान तो देश के भविष्य को आकार देने पर ही था। वो लगातार एक बेहतर, एक मजबूत संविधान की वकालत करते रहे।
इसी कड़ी में उन्होंने पहले एनापोलिस कन्वेंशन और फिर फिलाडेल्फिया में जो संवैधानिक कन्वेंशन हुआ उसमें अहम भूमिका निभाई। हालांकि उनके कुछ ज्यादा ही कट्टर विचार, जैसे राष्ट्रपति और सीनेटरों का आजीवन कार्यकाल,
हाँ, वो तो नहीं माने गए।
वो नहीं माने गए, लेकिन फिर भी नए संविधान के ढांचे पर उनका गहरा प्रभाव था। और जब संविधान बन गया तो असली चुनौती थी उसे राज्यों से मंजूर करवाना।
ये मुश्किल काम था।
हाँ, इसे पूरा करने के लिए हैमिल्टन ने द फेडरलिस्ट पेपर्स लिखने का आइडिया पेश किया।
ये कोई छोटा काम नहीं था।
जेम्स मैडिसन और जॉन जे के साथ मिलकर उन्होंने कुल 85 निबंध लिखे और उनमें से 51 अकेले हैमिल्टन ने लिखे।
51? कमाल है।
हाँ, ये आज भी अमेरिकी राजनीति सोच का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है। इसने न केवल संविधान को पास करवाने में मदद की, बल्कि हैमिल्टन को एक असाधारण राजनीतिक विचारक के रूप में भी स्थापित कर दिया।
बिल्कुल। और जब जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने तो उन्होंने हैमिल्टन की काबिलियत को पहचाना और उन्हें देश का पहला ट्रेजरी सचिव यानी वित्त मंत्री नियुक्त किया।
और ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। नया राष्ट्र तब, मतलब दिवालिया होने की कगार पर था, भारी कर्ज था उस पर और दुनिया में कोई आर्थिक साख नहीं थी।
यही पर हैमिल्टन ने वो कर दिखाया जिसके लिए उन्हें आज सबसे ज्यादा जाना जाता है। उन्होंने अमेरिकी अर्थव्यवस्था की पूरी, कह सकते हैं, वास्तुकला ही तैयार कर दी। उन्होंने कांग्रेस के सामने एक के बाद एक कई साहसी रिपोर्टें पेश की।
पहली थी सार्वजनिक ऋण पर रिपोर्ट। इसमें उन्होंने एक बहुत ही उस समय के हिसाब से विवादास्पद प्रस्ताव रखा कि संघीय सरकार राज्यों द्वारा लिए गए युद्ध के सारे कर्ज अपने ऊपर ले लेगी।
अच्छा।
और उन्हें चुकाएगी भी।
हाँ।
और पूरी कीमत पर चुकाएगी। इसका बहुत विरोध हुआ, खासकर जेम्स मैडिसन जैसे नेताओं ने किया। उन्हें लगा कि इससे उन सट्टेबाजों को फायदा होगा जिन्होंने सस्ते में कर्ज के बॉन्ड खरीद लिए थे।
हाँ, ये चिंता तो जायज लगती है।
लगती है, लेकिन हैमिल्टन का लक्ष्य दूर का था। वो चाहते थे कि जो अमीर लेनदार हैं और जो राज्य हैं, वो नई संघीय सरकार की सफलता से सीधे जुड़ जाएं।
अच्छा, मतलब उनका हित जुड़ जाए।
बिल्कुल। अगर सरकार सफल होगी तभी उन्हें उनका पैसा वापस मिलेगा। इस एक कदम ने न केवल देश को वित्तीय स्थिरता दी बल्कि राष्ट्रीय एकता को भी मजबूत किया। बहुत सोचा समझा कदम था।
वाकई। इसके बाद आई उनकी राष्ट्रीय बैंक पर रिपोर्ट। इसमें उन्होंने बैंक ऑफ इंग्लैंड की तर्ज पर अमेरिका के पहले राष्ट्रीय बैंक की स्थापना का प्रस्ताव रखा और इसने तो अमेरिका के इतिहास में पहला बड़ा संवैधानिक विवाद खड़ा कर दिया।
हाँ, क्योंकि थॉमस जेफरसन जैसे नेताओं का तर्क था कि संविधान कांग्रेस को बैंक बनाने का अधिकार साफ साफ नहीं देता।
तो फिर बैंक बना कैसे?
यहीं पर हैमिल्टन ने निहित शक्तियों यानी इम्प्लाइड पावर्स का सिद्धांत पेश किया। ये अमेरिकी कानून में एक मील का पत्थर साबित हुआ।
निहित शक्तियां मतलब?
उन्होंने तर्क दिया कि अगर संविधान सरकार को कुछ काम सौंपता है, जैसे टैक्स वसूलना, व्यापार को नियंत्रित करना, तो उसे उन कामों को पूरा करने के लिए जो भी आवश्यक और उचित साधन है उन्हें अपनाने का अधिकार भी देता है, भले ही उन साधनों का जिक्र संविधान में साफ तौर पर ना हो।
अच्छा, ये तो बड़ा तर्क था।
बहुत बड़ा। वॉशिंगटन ने हैमिल्टन का पक्ष लिया, बैंक बन गया और इससे संघीय सरकार के अधिकार क्षेत्र का काफी विस्तार हुआ।
और उनकी तीसरी अहम रिपोर्ट थी विनिर्माण पर रिपोर्ट। इसमें उन्होंने अमेरिका के भविष्य का एक अलग ही नक्शा पेश किया।
हाँ, एक ऐसा देश जो सिर्फ खेती पर निर्भर न हो बल्कि अपने उद्योग भी विकसित करे। उन्होंने घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए टैरिफ और सरकारी सहायता की वकालत की।
तो क्या इस पर अमल हुआ?
उस समय इस रिपोर्ट पर ज्यादा अमल नहीं हुआ, लेकिन चरणों इसे भविष्य की अमेरिकी औद्योगिक क्रांति का एक तरह से आधार ग्रंथ मानते हैं। ये जेफरसन का जो सपना था ना, एक कृषि प्रधान अमेरिका का।
हाँ, उससे बिल्कुल अलग था।
बिल्कुल, एकदम अलग।
लेकिन हैमिल्टन की इन नीतियों ने, भले ही वो आर्थिक रूप से सफल रही, अमेरिकी राजनीति में एक गहरी खाई जरूर पैदा कर दी।
हाँ, यहीं से अमेरिका के पहले राजनीतिक दलों का जन्म हुआ। एक तरफ हैमिल्टन के नेतृत्व वाले फेडरलिस्ट, जो मजबूत केंद्र सरकार, वाणिज्य और उद्योग के पक्षधर थे, आधारित समाज के हिमायती थे, और ये बहसें अक्सर बहुत तीखी और व्यक्तिगत हो जाती थीं।
और इसी कड़वे राजनीतिक माहौल का असर उनके निजी जीवन पर भी पड़ा। उनके दुश्मनों ने मारिया रेनॉल्ड्स नाम की एक शादीशुदा महिला के साथ उनके प्रेम संबंध का पता लगा लिया और उन पर वित्तीय भ्रष्टाचार का आरोप लगाने की कोशिश की। खुद को वित्तीय आरोपों से बचाने के लिए हैमिल्टन ने एक हैरान करने वाला कदम उठाया। उन्होंने एक पैम्फलेट प्रकाशित किया जिसमें उन्होंने पूरे प्रेम संबंध का ब्यौरा दे दिया।
क्या उन्होंने खुद ही सब बता दिया?
हाँ, इससे उनकी वित्तीय ईमानदारी तो साबित हो गई लेकिन उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को भारी नुकसान पहुंचा। उनकी पत्नी एलिजा, जो हमेशा उनके साथ खड़ी रही, उन्हें सार्वजनिक रूप से बहुत अपमान झेलना पड़ा।
ये घटना हैमिल्टन के चरित्र की जटिलताओं को दर्शाती है। एक तरफ उनका असाधारण सार्वजनिक जीवन और प्रतिभा, दूसरी तरफ उनका अभिमान, उनका आवेगी स्वभाव और निजी मामलों में गलत फैसले लेने की प्रवृत्ति।
ट्रेजरी सचिव के पद से इस्तीफा देने के बाद भी हैमिल्टन राजनीति में सक्रिय रहे। फेडरलिस्ट पार्टी में उनका काफी दबदबा था लेकिन उनका रवैया कभी कभी उनके लिए ही मुश्किलें खड़ी कर देता था।
जैसे
उन्होंने साथी फेडरलिस्ट राष्ट्रपति जॉन एडम्स की सार्वजनिक रूप से कड़ी आलोचना कर दी जिससे पार्टी के अंदर ही फूट पड़ गई।
अच्छा, और चेरनो की किताब का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हारन बर के साथ हैमिल्टन की लंबी और कड़वी दुश्मनी पर भी है। बर भी हैमिल्टन जितने ही महत्वाकांक्षी थे लेकिन चेरनो ने एक ऐसे अवसरवादी के रूप में दिखाते हैं जिनके लिए सिद्धांत कोई मायने नहीं रखते थे। ये दुश्मनी 1800 के राष्ट्रपति चुनाव में चरम पर पहुंच गई। जब चुनाव में जेफरसन और बर के बीच टाई हो गया तो हैमिल्टन ने, सोचिए, अपने कट्टर वैचारिक दुश्मन जेफरसन का समर्थन किया।
जेफरसन का
क्यों?
क्योंकि वो बर को देश के लिए एक बड़ा खतरा मानते थे। उन्हें लगता था कि बर सिद्धांतहीन है।
और इसी दुश्मनी का अंत बहुत दुखद हुआ। कुछ साल बाद जब बर का राजनीतिक करियर एक बार फिर हैमिल्टन के विरोध के कारण रुकावटों का सामना कर रहा था, बर ने हैमिल्टन को द्वंद्व युद्ध यानी ड्यूल के लिए चुनौती दी।
ड्यूल, वो बंदूक वाली लड़ाई?
हाँ, हैमिल्टन उस जमाने के सम्मान के कड़े नियमों और शायद अपने सिद्धांतों के कारण इस चुनौती से पीछे नहीं हट सके। जुलाई 1804 में न्यू जर्सी के वी हॉकिन में ये द्वंद्व युद्ध हुआ
और
हारून बर की गोली लगने से हैमिल्टन की मृत्यु हो गई। वे केवल 49 वर्ष के थे।
ओह, कितनी दुखद बात है, इतनी कम उम्र में।
हाँ, उनकी मृत्यु के बाद उनकी विरासत को जिंदा रखने का मुश्किल काम उनकी पत्नी एलिजा ने संभाला। वो हैमिल्टन के बाद 50 साल और जीवित रहीं।
50 साल? हाँ, उन्होंने हैमिल्टन के हजारों पन्नों के लेखों को इकट्ठा किया, उनकी प्रतिष्ठा का बचाव किया और ये सुनिश्चित करने के लिए संघर्ष किया कि अमेरिकी राष्ट्र के निर्माण में उनके पति के योगदान को भुलाया ना जाए। आज हम हैमिल्टन के बारे में जितना जानते हैं उसका बहुत बड़ा श्रेय एलिजा के प्रयासों को जाता है।
ये तो सच में एक असाधारण और उतार चढ़ाव भरी जिंदगी थी। अगर हम हैमिल्टन के मूल दर्शन और मूल्यों को समझने की कोशिश करें तो चरणों की किताब से क्या मुख्य बातें निकल कर आती हैं?
देखिए, सबसे पहली बात तो है एक मजबूत केंद्रीय सरकार में उनका अटूट विश्वास। उन्होंने क्रांति के दौरान और उसके बाद जो अव्यवस्था और अक्षमता देखी थी ना।
हाँ, परिसंघ के लेखों के तहत।
बिल्कुल, उसे वो बहुत करीब से जानते थे। उनका मानना था कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए भी एक कारगर और शक्तिशाली सरकार जरूरी है, वरना अराजकता फैल जाएगी।
दूसरी अहम बात, उनका योग्यता पर आधारित समाज यानी मेरिटोक्रेसी में गहरा विश्वास था ना, न कि कुलीन तंत्र यानी अरिस्टोक्रेसी में।
शायद इसलिए क्योंकि वो खुद बिना किसी पारिवारिक विरासत या संपत्ति के आगे बढ़े थे।
हाँ बिल्कुल, केवल अपनी प्रतिभा और मेहनत के दम पर। वो चाहते थे कि समाज में अवसर जन्म के आधार पर नहीं बल्कि योग्यता के आधार पर मिले। यही वजह थी कि उनका वर्जीनिया के जमींदार और गुलाम मालिक वर्ग के नेताओं जैसे जेफरसन और मेडिसन से अक्सर टकराव होता रहता था।
तीसरा, उन्हें आधुनिक अमेरिकी पूंजीवाद का वास्तुकार कहा जा सकता है। वो समझते थे कि देश की राजनीतिक स्वतंत्रता तभी सुरक्षित रह सकती है जब उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत हो।
जी,
उन्होंने जानबूझकर ऐसी संस्थाओं और नीतियों का निर्माण किया जैसे सार्वजनिक कर्ज का प्रबंधन, राष्ट्रीय बैंक, उद्योगों को प्रोत्साहन, जिनसे एक गतिशील पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की नींव पड़ी।
और उनका आप्रवासी होना, क्या इसका भी उनके नजरिए पर कोई असर था?
हाँ, चरणों का तर्क है कि क्योंकि वो किसी एक राज्य से गहरे जुड़े हुए नहीं थे, वो पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका के हितों को ज्यादा स्पष्ट रूप से देख पाते थे। उनकी निष्ठा किसी एक प्रांत या क्षेत्र के प्रति नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र के प्रति थी। इसने उन्हें एक अलग, एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण दिया।
और उनके बचपन के अनुभव, उनका क्या असर था?
निश्चित रूप से, बचपन की जो अराजकता और असुरक्षा थी उसने उनमें व्यवस्था, स्थिरता और वैधता के प्रति एक गहरा झुकाव पैदा किया। वो ऐसी प्रणालियां बनाना चाहते थे जो मजबूत हों, टिकाऊ हों। और आखिरकार लिखित शब्द की ताकत में उनका विश्वास। उनकी कलम ही उनका सबसे बड़ा हथियार थी, चाहे वो क्रांतिकारी पैम्फलेट हों, फेडरलिस्ट पेपर्स हों या ट्रेजरी की रिपोर्टें। विचारों को तर्क, स्पष्टता और जोरदार ढंग से पेश करने की उनकी क्षमता, वो तो अद्वितीय थी।
अब अगर हम उनके जीवन के कुछ सबसे अहम मोड़ों की बात करें, तो ऐसे कौन से तीन पल थे जिन्होंने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी?
पहला और शायद सबसे महत्वपूर्ण मोड़ तो जॉर्ज वॉशिंगटन का सहयोगी बनना ही था।
हाँ, वो एट डे कैंप वाला पद।
बिल्कुल, इस पद ने उन्हें गुमनामी से निकालकर सीधे राष्ट्रीय पटल पर ला खड़ा किया। उन्हें वॉशिंगटन जैसा शक्तिशाली संरक्षक मिला, उनका अटूट विश्वास हासिल हुआ, और सबसे अहम, उन्हें सरकार की कमजोरियों को करीब से देखने का मौका मिला, जिसने एक मजबूत संघीय ढांचे के लिए उनकी प्रतिबद्धता को और पक्का कर दिया।
दूसरा बड़ा मोड़ निश्चित रूप से तब आया जब वो पहले ट्रेजरी सचिव बने और उन्होंने अपनी वो महत्वाकांक्षी वित्तीय योजना लागू की।
हाँ, वो कर्जे और बैंक वाली योजना।
जी, इसने न केवल अमेरिका को दिवालियेपन से उबारा और भविष्य की आर्थिक महाशक्ति बनने की नींव रखी, बल्कि निहित शक्तियों के सिद्धांत के जरिए संघीय सरकार की ताकत को भी स्थापित किया। और हाँ, इसी दौरान अमेरिका के स्थायी राजनीतिक दलों का भी जन्म हुआ, जो सीधे तौर पर उनकी नीतियों की ही प्रतिक्रिया थे।
और तीसरा मोड़, दुखद रूप से हेरुनबर्ग के साथ वो द्वंद्व युद्ध स्वीकार करना था।
हाँ, वो दुखद अंत।
ये उस युग के सम्मान के कठोर कोड, हैमिल्टन के अपने सिद्धांतों की बर राष्ट्र के लिए खतरा हैं, और शायद उनके अपने आवेगी स्वभाव का मिला जुला परिणाम था। इसने अमेरिका को उसके सबसे प्रतिभाशाली दिमागों में से एक से असमय ही वंचित कर दिया।
हैमिल्टन की कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, इसमें हम सबके लिए कई मानवीय सबक छिपे हैं। सबसे पहले तो ये विपरीत परिस्थितियों पर विजय पाने की कहानी है। ये दिखाती है कि किसी की शुरुआत कैसी भी हो, कड़ी मेहनत, आत्मशिक्षा और दृढ़ संकल्प से बड़ी बाधाओं को पार किया जा सकता है।
बिल्कुल, साथ ही ये संचार की ताकत को भी उजागर करती है, खासकर लिखने की। अपने विचारों को स्पष्ट, तार्किक और प्रेरक ढंग से व्यक्त करने की क्षमता सफलता के लिए कितनी जरूरी है, हैमिल्टन इसका जीता जागता उदाहरण है। उनकी ज्यादातर सफलता तो उनकी कलम की ताकत पर ही टिकी थी।
लेकिन उनकी कहानी एक चेतावनी भी देती है महत्वाकांक्षा के प्रबंधन के बारे में। महत्वाकांक्षा आगे बढ़ने के लिए जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अगर उसे विवेक, आत्म जागरूकता और भावनात्मक संतुलन के साथ नियंत्रित न किया जाए तो वो विनाशकारी भी हो सकती है।
हाँ, जैसे हैमिल्टन का अभिमान और उनका आवेगीपन।
बिल्कुल, वो अंततः उनके पतन में सहायक हुए। एक और सबक है सिद्धांतों पर टिके रहने का। नेताओं को कभी कभी व्यापक भलाई के लिए ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो लोकप्रिय न हों। हैमिल्टन ने भारी विरोध के बावजूद अपनी वित्तीय योजनाओं को आगे बढ़ाया, क्योंकि उन्हें यकीन था कि ये राष्ट्र के भविष्य के लिए जरूरी हैं।
और संस्था निर्माण का महत्व भी साफ दिखता है। हैमिल्टन ने सिर्फ नीतियां नहीं बनाई, बल्कि ट्रेजरी विभाग, राष्ट्रीय बैंक, क्रेडिट सिस्टम जैसी स्थायी संस्थाएं खड़ी की।
हाँ, जो उनके जाने के बाद भी देश के काम आती रहीं। स्थायी नेतृत्व वही होता है जो व्यक्ति से परे जाकर व्यवस्थाओं का निर्माण करे।
अंत में ये कहानी सार्वजनिक और निजी जीवन के जटिल रिश्ते को भी दर्शाती है। नेताओं का निजी जीवन और चरित्र हमेशा सार्वजनिक जांच के दायरे में रहता है और उनके करियर पर गहरा असर डाल सकता है।
हाँ, जैसे वो मारिया रेनोल्ड्स वाला प्रकरण।
बिल्कुल।
तो इस पूरी चर्चा के बाद अगर हमें तीन मुख्य निष्कर्ष निकालने हों तो वो क्या होंगे?
पहला निष्कर्ष मैं कहूंगा भावनात्मक स्तर पर है। एक नाजायज, अनाथ, आप्रवासी लड़के का दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्रों में से एक के निर्माण में केंद्रीय भूमिका निभाना, ये मानवीय जिजीविषा, लचीलेपन और दृढ़ संकल्प की एक अविश्वसनीय रूप से प्रेरक कहानी है।
दूसरा निष्कर्ष बौद्धिक स्तर पर है। हैमिल्टन की आर्थिक दृष्टि, वो मजबूत वित्तीय प्रणाली, सार्वजनिक क्रेडिट, औद्योगिक विकास और उनका राजनीतिक दर्शन, एक शक्तिशाली संघीय सरकार, ये अमेरिका की बाद की सफलता के लिए मौलिक साबित हुए। चरणों का तर्क है कि उनकी दृष्टि उनके कई समकालीनों की जो कृषि प्रधान सोच थी उससे कहीं ज्यादा दूरदर्शी थी।
और तीसरा निष्कर्ष सार्वभौमिक है। स्थायी सफलता के लिए, चाहे वो राष्ट्र निर्माण हो या व्यक्तिगत जीवन, मजबूत सिद्धांत, कड़ी मेहनत, प्रभावी संचार और टिकाऊ संस्थानों का निर्माण आवश्यक है। ये सबक हैमिल्टन के जीवन और समय से परे जाकर आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं।
और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं
क्या ये सोचने लायक नहीं है कि हैमिल्टन की आप्रवासी पृष्ठभूमि, उनका वो बाहरी होना, शायद उन्हें अमेरिका की क्षमता और जरूरतों को एक ऐसे अनूठे नजरिए से देखने में मदद करता था जो उन संस्थापकों के पास नहीं था जो जन्म से ही किसी विशेष राज्य या क्षेत्र से गहरे जुड़े हुए थे?
ये दिलचस्प सवाल है। क्या उनकी बाहरी स्थिति ने ही उन्हें वो राष्ट्रीय दृष्टि दी जो शायद अंदरूनी लोग नहीं देख पा रहे थे? सोचने वाली बात है।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत किया गया है।